ओम शांति। भारत की भूमि अनेक महापुरुषों की चारित्रिक कुशलता एवं वीरता की परम साक्षी है। उन्हीं महापुरुषों में एक नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का, क्योंकि वह पुरुषों में उत्तम स्थान रखते थे। भक्ति मार्ग में इसी उत्तम स्थान पर होने के कारण उन्हें पूज्य माना जाता है। परमपिता परमात्मा ने ज्ञान मार्ग में भी ऐसी ही एक अनुपम कृति इस मधुबन की धरा पर तैयार की। धाता रामलोचन जी के रूप में हम सभी धाता जी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। धाता जी ने अपने नाम अनुरूप अपनी दृष्टि वृत्ति से उस परम सत्ता को प्रत्यक्ष करने का भरसक प्रयास किया है। आपकी हमेशा यह प्रबल इच्छा रहती है कि इतनी तपस्या करूं जो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी के नजदीक आपका लौकिक जन्म हुआ, जहां स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने लौकिक जीवन में एक जौहरी के रूप में ख्याति प्राप्त की। आपने भी सन 1972 में उसी कलकत्ता में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर अपने अलौकिक जीवन का प्रारंभ किया। आपकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि आप पहली बार जिस क्षण बाबा से मिले उसी क्षण में आपने समर्पण का निश्चय किया। ऐसी महान विभूति, तपस्वी मूर्त, एकाग्रचित एवं अंतर्मुखता और हर्षित मुक्ता का सुखद संतुलन अपनी चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले आदरणीय भ्राता जी के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होंगे। आज का विषय है श्रीमत पर चलने के फायदे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। आप सभी कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं कि जिनके जीवन की नैया को पार ले जाने के लिए खिवैया के रूप में स्वयं जो विश्व की नैया पार करने वाला है वो आपका गाइड बना है, और गाइड भी बाप शिक्षक सतगुरु के रूप में बनाए। तो ये आत्मा का तो अहो सौभाग्य है कि भगवान ने हमारे जीवन की नैया को पार करने का पतवार अपने हाथ में ले रखा है। दिल से यही निकलता है, वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह। बाबा, हम आप सबको उस पार ले जाने के लिए अर्थात मुक्ति या जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए रोज श्रीमत देता है। लेकिन श्रीमत की पालना नंबर वार करते। क्यों नंबर वार होती है? जहां तक मैं समझता हूं, नंबर वार होने का कारण है, एक तो कौन श्रीमत दे रहा है, वो जो है जैसा है उस स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है कि ये डायरेक्शन मुझे किसने दिया है। दूसरी बात, अगर स्मृति होती भी है तो कई बार डायरेक्शन को अमल में लाने के लिए आत्मा में ताकत नहीं होती है, इतना विल पावर नहीं होती है जो हम प्रैक्टिकल में ला सकें। तीसरी बात, जैसे हम श्रीमत पर चलने की कोशिश करते हैं, हमारे पुराने संस्कार विघ्न डालते। संस्कार उछल खाते हैं। चौथी बात, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे जन की, ये परिस्थितियां आने लगती हैं, जिससे हम जैसा चाहें वैसा हम श्रीमत की पालना नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात कि श्रीमत पर चलने से हमें कितना बड़ा फायदा है, ये प्रैक्टिकल बुद्धि में इमर्ज नहीं रहता है, क्योंकि फायदा पुरुषार्थ स्वतः कराता है। अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसके सामने प्राप्ति इमर्ज रूप में है नहीं। जैसे देखो, बाबा मुरली में भी कहता है कि अगर ग्राहक आ जाते हैं तो दुकानदार सारी रात जागता रहता है, कमाई होती है, तो कमाई के आगे थकावट नहीं होती, करने का मन कहता है। तो कमाई क्या है श्रीमत पर चलने से, इसका फायदा का अनुभव नहीं है। श्रीमत पर चलने से बहुत फायदा है, फिर भी कुछ मुख्य रूप से बताते हैं। पहली बात, अगर आप श्रीमत पर चलते हैं तो आपके कर्मों का जिम्मेदार स्वयं भगवान हो जाता है। दूसरी बात, आप श्रीमत पर चलते हैं तो आपको हर कर्म में सफलता अवश्य मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भगवान ने कहा है, तो भगवान का कहा हुआ शब्द कभी विफल नहीं जा सकता। तीसरी बात, श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे पास्ट का खाता खत्म होता जाता है। चौथी बात, श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा होता जाता है। जिसके कारण आपका योग सहज लगने लगता है। इसके बाद अगर आप श्रीमत पर चलते हैं तो आपका कोई भी काम, चाहे प्रेजेंट देखने में उल्टा लग रहा है लेकिन बाबा सुलटा कर देता है। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो भगवान आपकी रक्षा करता है। कई प्रकार से रक्षा करता है। इसका एक उदाहरण बताता हूं कि श्रीमत पर चलने से रक्षा कैसे होती है। हम एक बार, करीब 30-40 साल पहले की बात है, हम अपने लौकिक गांव जा रहे थे तो दिल्ली से, यूपी के हैं, दिल्ली से लखनऊ के लिए बाय रोड बाय बस जा रहे थे। तो रास्ते में एक स्थान आता है उन्नाव, तो वहां तक रोड लाइट, जैसे शहर क्रॉस हुआ रोड लाइट खत्म हो गई थी। तो उस बस में कुछ बदमाश चढ़ गए थे, तो जैसे रोड लाइट खत्म हुई, आगे जाकर उन बदमाशों ने ड्राइवर को रिवाल्वर दिखा करके बस को रोड से साइड पर करा गए और वहां पर फिर लूटना शुरू कर दिया। हर एक पैसेंजर के पास जो कुछ भी था, जैसा भी था, लूटना शुरू किया। हम भी आगे से तीसरे नंबर सीट पर बैठे थे और मेरे पास भी उस समय जो कुछ भी था, पैसे थे, टेप रिकॉर्ड था, कैमरा था, उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो वो सब उसी थैले में ही रखा हुआ था और मैं ले करके बैठा था। तो जब लूटते हुए देखा तो मेरे मन में संकल्प आया कि क्या करूं, क्या ये सारा जो कुछ भी है, पैसे हैं, ये सब चीजें, ये ऐसे चोर ले जाएगा, भगवान के घर का ऐसे ही चला जाएगा। फिर दूसरे सेकंड संकल्प आता है कि कर ही क्या सकता हूं, सिवाय बाबा की याद के। तो मैं बाबा की याद में बैठ गया, कहा जो होना होगा होगा। और जब वो जो लूटने वाला है वो जब आता है तो हम बैग ऐसे लिए हुए बैठे थे, मतलब यहीं लगा करके ऐसे बैठे थे, इतना बड़ा बैग था। तो जब वो आता है तो हम बैग उसके आगे करते हैं कि ये आप ले जाओ। तो जैसे बैग आगे किया उसको ये बैच दिखाई पड़ता है, और जैसे बैच उसको दिखता है, अब बाबा जाने क्या दिखाई देता है उसको, वो वहां से चला जाता है। उसके बाद दूसरा आता है, वही क्रिया बैग जैसे आगे किया वो चला जाता है। लास्ट में उसका जो हेड था सरदार, वो आता है और वो आकर के खड़ा हो जाता है। हमने बैग दिया, कहता मुझे बैग नहीं चाहिए। कहा आप लोग बार बार आते हो और बैग देता हूँ, सामान देता हूँ, ले नहीं जाते हो आप लोग, चाहिए क्या आप लोगों को? तो जो बैच था वो उस समय वो चार आने का मिलता था, अल्मोनियम का होता था। एक तरफ शिव बाबा गोल्डन कलर का होता था, उसके पीछे त्रिमूर्ति होती थी, चार आने का मिलता था। तो उसने इशारा किया कि हमें ये चाहिए बैच की तरफ। तो हमने कहा इसको आप क्या करोगे, ये अगर समझते हो सोना है तो ये सोना तो है नहीं। उसको पलट के दिखा दिया, हम कहा देखो ये अल्मोनियम है, और अगर सोना भी समझते हो तो इससे ज्यादा माल तो इस थैले में है। पैसे भी दिखा दिए, टेप रिकॉर्ड कैमरा दिखा दिया, आप ये ले जाओ। बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो हम कहा क्या चाहिए, तो बोला बैग चाहिए। हम कहा ये तो मैं नहीं दूंगा, मुझे आप मार के ले सकते हो, बाकी जीते जी मैं अपने हाथ से ये बैच आपको नहीं दूंगा। क्योंकि जो ये बैच लगाता है वो पाप कर्म नहीं कर सकता है, ये भगवान की आज्ञा है, इसलिए हम ये आपको नहीं दे सकते। तो कहता अगर मैं पाप कर्म करना छोड़ दूं तो? हम कहा अगर आप छोड़ देते हो तो मैं दे दूंगा। तो कहता मैं प्रामिस करता हूं आज से ये कर्म नहीं करूंगा। तो हम कहा हमें क्या प्रूफ, अभी आप दूं और फिर शुरू कर दो धंधा? हमें विश्वास तब पड़ेगा जिसका आप सामान लूटा है सबको वापस दे दो, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप ऐसा कर्म नहीं करोगे। उसने सबका सामान वापस कर दिया। अब ये बाबा की श्रीमत है, बच्चे हमेशा बैच लगा के रखो, ये बैच आपकी रक्षा करेगा। कई बच्चों को शर्म लगती है, लगाते नहीं, और कई इतना छोटा सा लगाते हैं जैसे कोई दिखाई नहीं पड़े, लेकिन नहीं, रक्षक है। और रक्षक ही नहीं, इतनी बड़ी सेवा हुई कि उस बस के जितने लोग थे सब पूछने लगे, बाबा का परिचय दिया। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, सुधरे या नहीं सुधरे क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय प्रैक्टिकल ये घटना घटी। तो बाबा जो श्रीमत देता है उससे हमारी रक्षा भी होती है, और जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी भगवान की दुआएं वो सूक्ष्म रूप से इकट्ठा होती रहती है, और वो दुआ कई बार ऐसे आई बेल के समय काम आती है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब कहते तो सोचा भी नहीं था ये हो सकता है। जैसे अभी कोरोना काल की बात है, महाराष्ट्र में टीचर बहन थी, सेंटर इंचार्ज थी, तो जब पढ़ाई पढ़ रही थी तभी से उसकी आंखें कुछ कमजोर थी, लेकिन पढ़ाई पढ़ती गई लेकिन आंख की कमजोरी बढ़ती गई, धीरे धीरे पढ़ करके सब कुछ होकर सेंटर पर समर्पित हो गई, सेंटर इंचार्ज भी बन गई। उस बीच में कई बार आंख का ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन उसकी रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। और जब कोरोना फैला हुआ था उसी बीच में उसको कोरोना भी हो गया। एक तरफ कोरोना हुआ और उसी समय उसकी आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई। जो थोड़ा बहुत दिखता था वो भी खत्म हो गया। तो कोरोना काल में तो समझते हो कोरोना होते ही तुरंत घर से बाहर कर देते हैं, उसको हॉस्पिटल ले गए। और जब कोरोना पेशेंट कोई होता है तो वहां और बीमारी का ख्याल नहीं करते हैं, सिर्फ कोरोना की ही दवा देते हैं, क्योंकि एम कोरोना का होता है। इसीलिए कोरोना में ज्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि कोरोना की दवाइयां बड़ी हार्ड होती है, और किसी का कोई अंग और कमजोर है तो सहन नहीं कर पाता है, तो उसको भी कोरोना की दवाई दी। और कोरोना की दवाई देने से रिजल्ट ये हुआ कि उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई, और इतनी अच्छी वापस आई जैसे छोटे बच्चे की होती। ये है बाबा के श्रीमत पर चलने की सूक्ष्म दुआओं का स्टॉक। कई भाई बहनें कहते हैं कि मैं तो बाबा के श्रीमत पर चलता हूं या चलते हूं, दूसरा तो चलता ही नहीं है और वही मुझे परेशान करता है और उसकी ही सुनी जाती है। लेकिन ये आप याद रखना, आपके श्रीमत पर चलने की भगवान के खाते में दुआएं जमा हो रही है। ये दुआएं ऐसे समय पर काम आएंगी जहां बिल्कुल असहाय हो जाओगे। तो ये दुआएं मदद भी करती। बाबा के श्रीमत पर चलते चलो, बाबा देखो क्या क्या करा। लेकिन अभी तक ब्राह्मणों को यही नहीं पता है कि श्रीमत होती क्या है। अगर किसी से पूछा जाए कि श्रीमत क्या है तो कहेंगे तो सहज बात है, बाबा की मुरली श्रीमत है, यही बात कहें। बाबा सिर्फ मुरली से श्रीमत नहीं देता, बाबा श्रीमत चार प्रकार से देता है, और जो चारों प्रकार की श्रीमत को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है श्रीमत पर चलना। पहली श्रीमत है मुरली, दूसरी श्रीमत है जो संदेशियां ट्रांस में जाती है, जैसे कल बाबा का भोग लगेगा, बाबा का संदेश आएगा, वो श्रीमत दिव्य संदेश, और ये संदेश प्रेजेंट वायुमंडल के प्रमाण होता है, इसलिए वो संदेश तुरंत धारण करना होता है। तीसरा है बाबा की श्रीमत, जब आप योग में बैठते हैं आपकी लाइन क्लीन और क्लियर है, और आप बाबा से चाहे स्वयं के पुरुषार्थ अर्थ, चाहे सेवा अर्थ, चाहे और किसी बात के अर्थ बाबा से पूछते हैं, तो उस समय जो बाबा टचिंग देता है वो बाबा की श्रीमत है। अब प्रश्न है कि हमें कैसे पता पड़े कि ये बाबा की टचिंग है, मेरी अपनी भी हो सकती है। ज्ञान की मुरली की पॉइंट के आधार पर भी हो सकती है, लेकिन बाबा की टचिंग है ये कैसे पता पड़े। अगर बाबा की टचिंग होगी उसकी तीन निशानी है। पहली निशानी है कि जो बाबा की टचिंग होगी उसमें आपके दिल पे ये 100% जैसे छप जाएगा कि ये बात 100% राइट, 100% राइट, 1% भी निगेटिव का नहीं होगा। दूसरी बात, जो बाबा की टचिंग होगी वो आप स्वयं देखेंगे कि ये बात तो मेरे मन में, चित्त में, बुद्धि में भी नहीं थी, वो बात आएगी। तीसरी बात, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सफलता अवश्य होगी। सफलता अवश्य होगी। एक मेरी बुद्धि से बाहर की बात है, दूसरा सफलता है, और तीसरा जो हमने कुछ सोचा भी नहीं था कभी, वो बात सामने आती है। ये बाबा की टचिंग है, ये भी श्रीमत है। चौथी श्रीमत है जो यज्ञ के द्वारा डायरेक्शन जाता है, जो यज्ञ के द्वारा डायरेक्शन जाता है, ये भी बाबा की श्रीमत है। अब जो इन चारों श्रीमत को फॉलो करता है वो असली श्रीमत पर चलता है। श्रीमत पर चलने का फल किसको मिलता है? श्रीमत पर सभी चल रहे हैं, नंबर वार है लेकिन चल रहे हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो ब्राह्मण ही नहीं बनते। ब्राह्मण हैं माना श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन श्रीमत पर चलना कहाँ किसे जाता है? श्रीमत पर चलना माना जो मुरली में, जिस दिन जो मुरली में बाप दादा के महावाक्य निकले, वो महावाक्य उसी समय उसी रूप से प्रैक्टिकल लाना शुरू कर दे। जैसे आप मुरली में सुनते हैं कई बार बाबा कहता है कि बाबा परम धाम में रहता है, आप बाबा को परम धाम में याद करो, आपका असली घर वही है। कभी बाबा कहता है बाबा परम धाम छोड़कर साकार में आ गया है, भक्ति में ऊपर याद करते थे, अभी नीचे है, अभी नीचे याद करो। कभी कहता है कि बाप दादा दोनों को इकट्ठा याद करो, कभी कहता है इस ब्रह्मा को नहीं याद करो। तो जिस दिन जिस मुरली में जो पॉइंट देता है उस दिन उसी रीति से वो करना श्रीमत की पालना है। ऐसे नहीं आज बाबा ने कहा कि बाबा नीचे आ चुका है, मुझे नीचे याद करो, और हम याद करते रे मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, वहीं मेरा बाबा रहता है। ये याद उस दिन के लिए श्रीमत नहीं है, ये श्रीमत की अवज्ञा है उस दिन के लिए। तो श्रीमत अर्थात मुरली में जो कहा, जिस दिन जिस प्रकार से कहा, उस दिन करने लग जाना, पहली बात। दूसरी बात, बाप दादा के द्वारा उच्चारण महावाक्य आपके कान तक आए और तुरंत बुद्धि उस पर, उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए चल पड़े, मंथन चलने लगे। ऐसे नहीं कहा आज और करो कल या परसों, वो श्रीमत की पालना नहीं। उससे आपको भगवान के द्वारा दुआओं की शक्ति की, आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होगी। भले किया लेकिन अगर तुरंत नहीं किया तो प्राप्ति नहीं होगी। उदाहरण के रूप से आप मान लो बीमार हो, कोई चीज की दवा चाहिए आपको और किसी को बोलो ये मुझे दवा ला करके दे दो, और वो उसी समय दौड़ के ला करके आपको दवा दे दे, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? ऑटोमेटिक। लेकिन उस दिन वो दवाई लाके ना दे, अगले दिन दूसरे दिन वो एक के बजाय दो तीन गोली लाकर दे दे, फिर भी दुआ निकलेगी? बिल्कुल। ऐसे कई पुरुषार्थ बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कारण है श्रीमत प्रमाण नहीं कर रहे। मुरली में कुछ बाबा ने कुछ आज कहा है उसको छोड़ करके जो कल कहा होगा परसों कहा होगा वो करने में लगे, चाहे योग में चाहे सेवा में कहीं भी। जो मुरली में जिस दिन जो आता है तुरंत करने लग जाओ, इसका फल क्या मिलेगा? इसका तुरंत फल ये है कि जब आप प्रैक्टिकल कर्म में लाना शुरू करते हैं तो आपके सामने आपके पुराने संस्कार हिसाब किताब जो कुछ है वो तुरंत आपके सामने रुकावट के रूप में आते हैं। लेकिन अगर तुरंत फॉलो किया है तो बाप उस हिसाब किताब को दबा देगा, हिसाब किताब ऊपर नहीं उठ पाएगा और आपको योग में या सेवा में सफलता 100% मिल जाएगी। ये बाप की गारंटी है। अगर तुरंत किया तो बाबा कहता है ना, ताजे फल में ताकत ज्यादा होती है, बासी फल में नहीं। तो तुरंत माना ताजा फल। तो श्रीमत की पालना अर्थात तुरंत करना। अब पहली श्रीमत है मुरली। हम श्रीमत क्यों नहीं फॉलो कर पाते? मुरली चलती है। आज आप सब ने मुरली सुनी होगी, लेकिन दिल पर हाथ रखकर देखो कि मुरली की कितनी पॉइंट याद है। लगभग मुरली भूली हुई है, किसी किसी को याद भी होगी, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी भूली हुई है। अब अगर पॉइंट ही भूल गए तो करेंगे क्या? फिर कैसे श्रीमत की पालना करेंगे? पॉइंट क्यों भूलती है? आप लोग मुरली सुनते हो, मुरली सुनने के बाद मुरली की पॉइंट याद क्यों नहीं रहती है? क्या कारण समझते हैं? हमारे सुनने में गलती है या बहन जी के सुनाने में गलती है? क्या समझते हैं, क्यों नहीं धारण होती, याद क्यों नहीं रहती है। कारण कई होंगे। कोई कहता होगा मन एकाग्र नहीं होता है, इसलिए पॉइंट भूल जाती है। दूसरी बात, कोई कहते हैं कार्य व्यवहार याद आ जाता है, कोई कहता है तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कई प्रकार के कारण बता देते हैं। इस कारण से मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती है। लेकिन मुख्य बात है, जिस विधि से बाबा ने मुरली सुनने की विधि बताई है, उस विधि से सुनो तो आप कल प्रयोग करके देखना, कल ही आपको याद रहती है या नहीं। अनुभव ऐसा कहता है कम से कम 75% मुरली की पॉइंट याद रहेगी। जिस विधि से बाबा ने कहा है, सेंटर पर मुरली चलती है, बहनें सुनाती हैं, कहीं भाई भी सुनाते होंगे। मुरली सुनने की विधि क्या है? यही कि बाप दादा की मुरली बहन जी पढ़ के सुना रही। हम बाप दादा की मुरली बहन जी के द्वारा सुन रहे। ये मुरली सुनने की विधि बनाई हुई, लेकिन ये विधि रांग है। अगर इस विधि से मुरली सुनेंगे तो मुरली की पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठेगी। मुरली सुनने की विधि क्या है? मुरली सुनने की विधि है कि सामने जो भी बैठा है उसको नहीं देखो, किसने मुरली सुनाई है, किसके द्वारा सुनाई है उसको देखो। मुरली शिव बाबा ने सुनाई है, ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाई है। सामने अव्यक्त बाप दादा को देखो। अब प्रश्न उठता है, ये मुरली तो प्रैक्टिकल में सुना तो बहन जी रही है, अगर बाप दादा तो मुरली नहीं सुना रहा है। बाप दादा की मुरली है जरूर, लेकिन सुना तो बहन जी रही है। लेकिन हमें कैसे अनुभव हो कि बहन जी की जगह बाप दादा सुना रहा है? इसके लिए जैसे पुराने जमाने में जो बुजुर्ग होंगे थोड़ा जानते होंगे, अगर किसी का बेटा या कोई भी कहीं बाहर नौकरी करने गया है और वो घर पे पत्र लिखता है और माँ बाप पढ़े हुए नहीं है, किसी से पत्र पढ़वाने के लिए ले जाते हैं, तो जब वो पत्र पढ़ के सुना रहा है तो उस समय आपको कौन दिखाई दे रहा है? पत्र सुना रहा है वो या बेटा? सोचो, उस समय प्रैक्टिकल बेटा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा की याद में सुन रहे हो। दूसरी बात, उस समय पत्र में जो लिखा है, जैसा लिखा है, सुनते सुनते मां बाप की वैसे स्थिति बनती जा रही, वैसा उनको अनुभव होता जा रहा है। तो सुनाने वाले की जगह बेटा दिखाई दे रहा है और सुनाने वाले के आवाज में बेटे की आवाज अनुभव हो रही है। ऐसे आप मुरली सुनते समय इस स्थिति से सुने कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा बाप दादा की मुरली सुन रही हूं। मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा बाप दादा की मुरली सुन रही हूं। तो आपको टीचर की जगह बाप दादा दिखाई देगा और टीचर की आवाज में बाप दादा की आवाज महसूस होगी। ये कब? जब आत्मक स्वरूप में टिक कर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनेंगे तब। इससे चार फायदा तुरंत होगा, कल करके देखना। पहली बात, आप आत्मक स्थिति में स्थित होकर मुरली सुन रहे हैं, इसलिए आपका मन बुद्धि 100% एकाग्र है। एकाग्र होने के कारण पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। दूसरी बात, आप आत्मक स्थिति में स्थित होकर मुरली सुन रहे हैं, इससे आप देह भान से न्यारे। तो देह भान से न्यारे होने के कारण आपको बाबा बहुत प्यारा लगेगा और जो प्यारा लगता है, जिससे प्यार होता है, उसकी एक एक बात दिल में छप जाती है। दुनिया में सबको अनुभव होगा। तीसरी बात, जब बाबा मुरली सुनाता है तो बाबा जानता है ये सब आत्माएं आधा कल्प की पतित आत्माएं हैं। यवर प्योर का ज्ञान इनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं, इसलिए बाबा उसी समय मुरली को धारण करने के लिए शक्ति भी देता है। अगर आप आत्मक स्वरूप में स्थित हैं, तो बाबा की शक्ति को कैच कर लेंगे और आपकी बुद्धि दिव्य बन जाएगी। दिव्य बुद्धि में दिव्य ज्ञान बैठ जाएगा। अगर आत्मक स्वरूप में नहीं है, इस भान में है, तो ये दीवाल है आप और बाप के बीच में। बाप का वाइब्रेशंस आप आत्मा तक पहुंचने में ये दीवाल का काम करेगी, देहभान रोक देगा, पहुंचने नहीं देगा। चौथा फायदा, अगर आप आत्मक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुनते हैं, तो बाबा जब मुरली सुनाता है, आपने ये सुना होगा मुरली में, कई बाबा गूह राज बताता है। आज मैं गूह ते गूह पॉइंट सुनाता हूं। अब गूह राज क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूं। बाबा कहता है कि आप सब आत्माएं इस समय संगम युग पर जो कर्म करती हो, ये कर्म सुकर्म बनता है, श्रेष्ठ कर्म। सतयुग में अकर्म, द्वापर कलियुग में बेकर्म। तो इस समय सुकर्म करते हो तो आप देवी देवता बन जाते हो। सतयुग में आपका कर्म अकर्म है। अकर्म का अर्थ ही है ना पाप है ना पुण्य है। तो जब आप ना पाप है ना पुण्य है, तो 16 से 14 कला क्यों हो गए? ना हमने पाप किया है जो हम उतरे, ना हमने पुण्य किया है जो चढ़े, तो हमें जैसे का वैसे रहना चाहिए। लेकिन 16 से 14 कला बन गए। कई कहते हैं प्रालबद्ध भोगा तो नीचे आए। प्रालबद्ध अलग चीज है, कला अलग चीज है। ऐसे कई गूह पॉइंट हैं। अगर आत्मक स्वरूप में टिको तो पता पड़ जाएगा। जैसे इसका जवाब है क्यों कम होती है। आत्मा जब तक परम धाम में है तब तक उसकी कुछ भी कला कम नहीं होती, जितना समय भी रहे। लेकिन जैसे परम धाम से उतरकर आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, प्रवेश करते ही आत्मा को इस प्रकृति का रंग जरा जरा सा लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण से श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा है। क्या लक्ष्मी नारायण ने पाप कर्म कर दिया? उनकी महिमा इसीलिए ज्यादा है क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर में आई हुई आत्मा को थोड़ा टाइम हुआ है, लक्ष्मी नारायण की आत्मा शरीर में रहते हुए ज्यादा समय हो गया है। तो जितना ज्यादा समय शरीर में आत्मा रहती है, शरीर के संग का रंग अर्थात पांच तत्वों का प्रभाव आत्मा पर जरा जरा सा पड़ता है और त्रेता के अंत तक पूरा प्रभाव पड़ जाता है, देवान में आ जाता है। इसलिए कलाकम कई ऐसे गुहे राज हैं जैसे बाबा कहता है कि जो हम तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग सीख रहे हैं, इससे ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति होती है ना, यही ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति होती है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं जब पढ़ करके पास होंगी तो क्या बनेंगी, देवी या देवता, यही बनेंगे ना। तो ब्राह्मण बड़े हैं या देवी देवता बड़े हैं, कौन बड़ा है? ब्राह्मण बड़े हैं ना, और आप पास हो करके देवी देवता बने तो बड़े बने या छोटे हुए? देवी देवता तो ब्राह्मणों से छोटे हैं ना। लेकिन बाबा कहता है राज योग से ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति होती है, वो है कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो राजयोग सीख रही हैं, जब ये आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो परम धाम में एकदम बाबा के समीप हो, एकदम भगवान के समीप हो। ये भगवान के समीप रहना, इससे बड़ी प्राप्ति कुछ भी नहीं। कोई भी धर्म पिता हो, कोई भी हो, भगवान के समीप नहीं रह सकता सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के। ये ऊंच से ऊंच प्राप्ति है। तो ऐसे कई गुहे गुहे पॉइंट हैं जो आप आत्मक स्वरूप में टिक करके मुरली सुनो तो उस गुहे पॉइंट के अर्थ को आप समझ सकेंगे, प्रैक्टिकल ला सकेंगे और मुरली को आप जीवन में ला सकेंगे। क्योंकि मुरली प्रैक्टिकल के लिए है, सुनने के लिए नहीं। प्रैक्टिकल फायदा देती है। उदाहरण के रूप से जैसे बाबा कहता है कि बच्चों को मारो नहीं, चंचलता करते हैं उनको मारो नहीं, परिवार वाले सुनना, बाबा है मुरली में बार बार कहता है। और घर में जब बच्चा चंचलता करता है तो एक बार दो बार तो बड़े प्यार से समझाते हो, नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बाबा के बच्चे हो, ऐसे करके दो एक बार समझाते हैं। और जब नहीं मानते हैं तब क्या होता है, उठ जाता है या नहीं उठ जाता है तुरंत? अब हाथ उठा तो भगवान की आज्ञा की अवज्ञा का दंड तो हमें मिलेगा ही, लेकिन अगर आपका हाथ उठा ही था मारने के लिए, इतने में ही आपको बाबा की पॉइंट याद आ जाए, नहीं बाबा ने कहा है मारना नहीं, तो हाथ रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा? तो प्रैक्टिकल फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो बाबा की मुरली प्रैक्टिकल फायदे की, और वो तब होगी जब याद रहेगा तब। तो इस विधि से मुरली सुनो तो पॉइंट याद रहेगी, प्रैक्टिकल जीवन में लाते लाते संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।
आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को श्रीमत स्पष्ट हुई और उसके लाभ भी आपने बताए प्रैक्टिकल उदाहरण देकर के। हम सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अभी 7 से 8 बजे तक सभी बाबा की याद में बैठेंगे।